الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر آپ مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں، مختلف سلسلے ہوتے ہیں مختلف ٹائمنگ میں، تو مدنی چینل الحمدللہ گھر بیٹھے علم دین پہنچا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ۔ آپ دیکھتے ہیں اس پروگرام میں ہم کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں گھر میں معاشرے میں ایک اصلاح ہو، تربیت ہو، بہتری ہو، اور بندہ جب سنیں، گھر والے سنیں، فیملی ممبر سنیں، بچے سنیں، بڑے سنیں، بوڑھے سنیں، اسٹوڈنٹ سنیں، ٹیچر سنیں، تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ایسا ملے کہ جس میں زندگی میں بہتری آئے۔ تو آج جو ہم موضوع آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ ہے گھر اور معاشرے میں محفل کے آداب۔ ایک تو وہ محفل ہوتی ہے محفل ذکر و نعت، محفل نعت، وہ بھی اپنی جگہ ہے، اس کے بھی اپنے آداب ہیں۔ یہاں ہماری مراد ہے کہ ایک مجلس، ایک گیدرنگ، جو لوگ بیٹھتے ہیں مل کر اور مختلف مواقعوں پر بیٹھتے ہیں، خاندان کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، فیملی ممبرس بھی بیٹھتے ہیں، دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، بعض اوقات غمی کے مواقع ہوتے ہیں، خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، شادی بھی آئے اس میں بیٹھے ہیں، کوئی خاندان کا کوئی ایسا ایونٹ ہے، عید ہے، تہوار ہے، تو وہاں بھی گیدرنگ ہوتی ہے، محفل لگتی ہے، ایک مجلس لگتی ہے۔ اسی طرح غم کا معاملہ ہے، کہیں انتقال کے لیے گئے، تعزیت ہے، جنازہ ہے، تو وہاں کے اپنے ایک آداب ہیں۔ مریض کے پاس گئے تو وہاں بھی کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو وہاں کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی میں چلے جائیں تو اسٹوڈنٹس لائف کے اندر کیا ہے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ میں تو وہاں کیا کرنا ہے، جوان بیٹھے ہیں، ینگسٹرس بیٹھے ہیں، فرینڈ سرکل ہے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آداب ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، خواتین ہیں تو اگر اب سہیلیاں ہیں اس طرح بیٹھتی ہیں تو ان کے بھی آداب ہیں، جوان بیٹھے ہیں ان کے اندر کوئی بوڑھا آ گیا تو اس میں کیا کرنا ہے، محفل چل رہی ہے بیچ میں بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، محفل میں بیچ میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے، بیچ سے اٹھ کے جانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ کھانے کی بھی محفل لگتی ہے اور ایسی لگتی ہے کہ سب سے کامیاب ترین حلقہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حلقہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بھی اپنے ایک آداب ہیں۔ پھر اسی طرح جب کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، لوگ مل کر بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی ایک کو اب شریف کہیں گے، غریب کہیں گے، بیچارے کو لاچار کہیں گے، مظلوم کہیں گے، لیکن کوئی ایک یا دو فرد کو اس محفل میں ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں، جملے کستے ہیں، وہ بیچارہ شاید ہوتا ہی اسی طرح ہے کہ وہ سب کی سن کے خود بھی ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، بڑا زبردست یہ موضوع ہے، اس میں بہت سارے سیکھنے کے مدنی پھول ملیں گے، ہماری بھی تربیت، گھر والوں کی تربیت، ساتھ والوں کی تربیت، بچوں کی تربیت۔ شروع میں میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ ایک نوجوان علم حدیث سیکھا کرتا تھا، اس کے وصال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس بڑے مزے سے ادھر ادھر ٹہل رہا ہے۔ میں نے اس سے اس کا ماجرا پوچھا، اس نے جواب دیا کہ میں احادیث لکھا کرتا تھا تو جہاں ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا تو میں اس کے نیچے یہ درود پاک پورا لکھتا، صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھ دیا کرتا، تو اللہ کریم نے مجھے اس کا یہ بدلہ عطا فرمایا جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔
سبحان اللہ،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس موضوع سے متعلق ہمارے پیارے پیارے مبلغین کی بھی زیارت کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ سید صاحب ہیں، سید قذافی شاہ صاحب مدنی، ماشاءاللہ شاہ صاحب، ماشاءاللہ کرم فرمایا، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے محمد خالد عطاری مدنی، ماشاءاللہ یہ بھی کرم فرما ہے، دونوں مدنی ہیں، دونوں علماء کرام ہیں، بہترین مبلغ ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں، اور एक इल्मी गुफ्तगू भी होती है, साथ साथ इंसान अपनी ज़िंदगी के तजर्बात भी शेयर करता है। तो तवज्जो से आप हमारा ये प्रोग्राम देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, मदनी चैनल के दीगर प्रोग्राम भी देखिएगा। तो चलते हैं हमारे खालिद मदनी भाई के पास कि महफिल मजलिस इसके आदाब से मुतल्लिक कुछ कुरान का फरमान भी है तो कुछ आप बताइए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीजीन। रब्बिल आलमीन जल्ला वाला का कलाम यानी कुरान मजीद एक ऐसा रहनुमा है जो हमें ज़िंदगी के आदाब बयान करता है। और मुसलमान जब क्योंकि एक इंसान की हैसियत में भी माशरे में रहता है और एक माशरे का फ़र्द है, तो इसे आदाब और तौर तरीके बयान किए गए हैं कि अगर ये महफिल में बैठे तो इसका अंदाज़ क्या होना चाहिए, और ईमान वालों की महफिल जो है ये कैसी सजाई जाए, इसको रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसके आदाब को बयान फरमाता है। कुरान करीम में ईमान वालों को मुखातब करके इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी दीगर कौमों से ईमान वालों को यहाँ पहले ही इम्तियाज दे दिया गया, इनको जुदागाना हैसियत देकर मुमताज किया गया और फिर इन्हें मजलिस के आदाब बताए गए।
वाह
इरशाद हुआ, ए ईमान वालों, ईमान वाले जरा तवज्जो और बढ़ा रहे हैं अपनी और इस बात को सुने कि हमारा रब हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। फरमाया गया, इदा कील लकुम तफस्सहू फिल मजालिस, जब तुमसे कहा जाए कि जगह कुशादा करो अपनी बैठकों में अपनी मजलिसों में, तो तफसहु यफसहिल्लाहु लकुम, तो तुम्हें चाहिए कि तुम जगह कुशादा करो यानी आने वाले को और जगह दो कि वो भी तुम्हारी महफिल में समा जाए, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमाए।
सुभान अल्लाह
यानी
सुभान
अमल भी बता दिया गया,
वाह
एक्ट कैसे करना है इस पर यह भी बताया जा रहा है, अगर करोगे तो इनाम क्या मिलेगा अल्लाह तबारक व ताला ने वो भी इरशाद फरमाया। फिर इरशाद फरमाया, व इदा कीलन शुजू फन शुजू, और अगर ये कहा जाए कि खड़े हो जाओ तो फिर महफिल से खड़े हो जाओ। यरफ़ल्लाहुल्लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात, रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तुम में से ईमान वालों के दरजात बुलंद फरमाएगा और इल्म वालों के दरजात बुलंद फरमाएगा।
वाह
यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने ईमान के साथ साथ इल्म की फजीलत को भी बयान फरमाया, और साथ ये बात भी बड़ी डोमिनेट है कि ये आयत करीमा नाजिल किस मौके पर हुई, क्या हो रहा था और माहौल क्या बना हुआ था।
क्या बात है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर कुरान नाजिल हो रहा है, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम महफिल में तशरीफ फरमा है, सहाबे कराम अलैहि रिदवान से वाज़ो इरशाद का सिलसिला जारी है। बदरी सहाबा वो थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम इन पर ज्यादा तवज्जो देते, खुसूसी इनायात इन पर होती और महफिल में सबसे ज्यादा करीब इनको बिठाया जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि महफिल शुरू हो चुकी थी, सहाबे कराम अलैहि रिदवान महफिल में तशरीफ फरमा थे और जो जितनी जगह थी वो भर चुकी थी। कुछ बदरी सहाबा आने में कुछ ताखीर हुई उन्हें और वो पीछे खड़े रहे और नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनते रहे। कुछ देर बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनकी तरफ तवज्जो फरमाई तो उन्होंने हुजूर को सलाम अर्ज किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया। फिर उन्होंने दीगर जो हजरात मौजूद थे उनको सलाम किया, उन्होंने भी जवाब दिया लेकिन जगह उनके लिए कुशादा नहीं की। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ अफराद को ये कहा कि आप यहाँ से उठें और ये जो आए हैं इनके लिए जगह कुशादा
सुभान
कर दी जाए।
अल्लाह
यानी इसमें भी देखिए कि आदाब भी उनको बयान किए जा रहे हैं और जो ज्यादा मर्तबे वाले लोग हैं उनको, जिस तरह आजकल हमारी महफिल में भी होता है कि महफिल की जीनत, रौनक महफिल, जीनत महफिल, और वो हों भी इसके अहल, तो उनको बनाना चाहिए और स्टेज पर लाना चाहिए, नुमाया मकाम देना चाहिए। इस आयत करीमा से हमें ये दर्स भी मिल रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब वो लेट आने वालों को, ताखीर से हाजिर होने वालों को यूं करीब बुलाया तो बाज अफराद के दिल में ये बात आई कि हम तो पहले से मौजूद थे तो हमें उठा दिया गया और उनको बुलाया गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने मुसलमानों को आदाब बयान किए कि
वाह
तुम मजलिस में किसकी हाजिर हो,
वाह
रसूलुल्लाह की मजलिस में हाजिर।
सुभान अल्लाह
अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम जैसा करने का कह दे तुम्हें चाहिए कि वैसा कर दो और
सुभान
दिल में भी कोई मलाल ना लाओ। अच्छा, यहाँ पर सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान की एक तो ये इंसानी फितरत के मुताबिक के अगर किसी को उठाकर थोड़ी सी जगह बनाई जाए तो दिल में एक बात आती है, उस बात के आने का भी जिक्र किया गया, लेकिन हैं ये ईमान वाले और ईमान वालों की ये ताजीम करें इन्हें ये भी सिखाया गया, गोया इनकी भी फजीलत को बयान कर दिया गया, आने वालों की भी फजीलत को बयान कर दिया गया और ये भी बयान कर दिया गया कि जब आने वाला ज्यादा फजीलत वाला है तो तुम्हें चाहिए कि ज्यादा फजीलत वाले का इकराम भी करो, उसके लिए जगह भी कुशादा करो।
क्या बात
तो यूं नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक महफिल का ये हाल है। अल्लाह तबारक व तआला वैसे भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, इन्नका बि आयुनिना, आप हमारी निगाह रहमत में हैं।
सुभान
तो जो
अल्लाह,
सहाबे करम अलैहिम रिजवान हुजूर की महफिल में बैठे हैं ना, वो सारी की सारी महफिल अल्लाह तबारक व तआला की निगाह रहमत में कैसी है कि रब्बुल आलमीन ने इन सब के ही अहवाल को बयान गोया फरमा दिया। वो आने वाले भी, ये जो पहले से बैठे हुए हैं ये भी, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था कि आप उठकर पीछे तशरीफ ले जाएं, जो बाद में आए हैं ये आगे आ जाएं, इन सब के हालात को बयान फरमाया। फिर रब्बुल आलमीन की तरफ से खुशखबरी भी दी कि अगर जो उठकर चले गए हैं वो दिल में मलाल ना लाएं, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए कुशादगी पैदा फरमा दे।
सुभान अल्लाह,
जो आए हैं अल्लाह करीम उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाएगा। फिर फरमाए, ये तुमने अमल किया है हुजूर की मोहब्बत में, नेक लोगों की अगर ताजीम में किया है, तो ये भी जान रखो, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, जो तुमने किया है ना अल्लाह तबारक व ताला उससे खबरदार भी है, और भी बदले अता फरमाएगा, इस पर और भी इनामात अता
क्या बात
फरमाएगा।
है मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये सुनाइए, दीन इस्लाम कितनी प्यारी तालीमात देता है आने वालों की एहतराम इकराम और उनके लिए कुशादगी, जो बैठे हैं उनका भी दिल ना टूटे तो अल्लाह पाक ने कैसी खुशखबरियाँ सुनाई है। तो ये दीन इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ताए हयात है बिल्कुल,
सुभान अल्लाह,
और बिल्कुल बंदे को जो है वो दुनिया में कैसे रहना है, यानी एक महफिल मजलिस, बज़ाहिर तो एक महफिल मजलिस होती है लेकिन इसके भी आदाब हैं और इसमें भी एक अंदाज होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि हम चलें एग्जांपल लेते हैं, फ्रेंड सर्कल की दोस्त बैठे हैं, अच्छी बात भी तो कर सकते हैं, फिक्र आखरत वाली बात भी तो कर सकते हैं,
सुभान अल्लाह,
नेकी की दावत वाली बात भी तो कर सकते
क्या
हैं,
बात,
बैठ गए। अब ज़रूरी है कि हम फजूल गुफ्तगू करें, बेहयाई वाली बातें करें, किसी की दिल आजारी करें, बैठ गए अच्छी बातें करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, जब मुसलमान हैं तो हमें तो आखिरत की फिक्र ही करनी है ना, दुनिया के जायज़ मामलात करें लेकिन वो भी यूं कि इसमें गुनाह ना हो। तो सैयद साहब क्या फरमाएंगे आप?
माशाल्लाह से जो आज का टॉपिक है, देखें इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ,
वाह
इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो
सुभान अल्लाह,
इस्लाम हर लिहाज से हमारी तरबियत करता है,
वाह
खाना कैसे है, पीना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, कारोबार है तो वो कैसे करना है, शादी के मामला है वो कैसे करने हैं। यानी दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें इस्लाम, नबी पाक अलैहि सल्लम की शरीयत मुतहरा, आप अलैहि सल्लम का किरदार, आप अलैहि सल्लम की सुन्नत मुबारका हमारी रहनुमाई नहीं
वाह,
करती।
हर मामले में
अब हर
माशाल्लाह,
मामले में हमारी रहनुमाई की जाती है और बेहतरीन अंदाज में की जाती
क्या
है।
बात है।
तो ऐसे जब गैदरिंग होती है, चाहे वो दो लोग मिलकर आपस में बैठते हैं, ये एक मजलिस एक गैदरिंग हो गई,
सही,
चाहे 3 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, चाहे 50 लोग हैं, तो अब ये जो गैदरिंग हो गई ये भी एक मुआशरे का हिस्सा है ना।
वाह जी,
कभी ये गैदरिंग जो है वो आपके घर के अंदर होता है, आपकी बहन भाई वालदेन मौजूद हैं, ठीक है, कभी आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, कभी आप पड़ोसियों के साथ बैठते हैं, कभी उलमा और मशायख के साथ बैठते हैं, कभी जो है यही गैदरिंग जो है वो कहीं कॉलेज के अंदर है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, कहीं यही गैदरिंग मस्जिद के अंदर है, मदरसे के अंदर है। तो ये गैदरिंग मुख्तलिफ जगह पर होती है, तो इस्लाम ने ये जो गैदरिंग है, जो आपस में मिल बैठ कर बैठना है, इसके भी आदाब बयान फरमाए हैं
वाह
और इसके हवाले से भी हमारी तरबियत फरमाई है। देखिए, पहले तो हमें ये गौर करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मैं जिस गैदरिंग में जा रहा हूं वो गैदरिंग है कैसी।
वाह,
अगर तो वो गैदरिंग अल्लाह को राजी करने के लिए है, उसके हबीब अलैहिस्सलाम को राजी करने के लिए है, कुछ मनफियत पाने के लिए है, कुछ हासिल करने के लिए है, कुछ गेन करने के लिए है, उस गैदरिंग को इख्तियार करना चाहिए, वहां जाना चाहिए। और जो गैदरिंग समझता है कि लावो लईब के अंदर है, अल्लाह को नाराज करने वाली है, उसकी हबीब अलैहिस्सलाम को नाराज करने वाली है, ना दीन का फायदा उसमें हो रहा है, ना दुनिया का फायदा हो रहा है, ना मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आएगी उससे, ना मेरे जाने से किसी और के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आएगी उसके अंदर, तो अब ऐसी मजालिस से, ऐसी गैदरिंग से, ऐसी जगह बैठने से जो है वो एतराज करना चाहिए, ऐसी जगह बैठना ही नहीं चाहिए। तो पहले तो गैदरिंग की गौर कर लें, गैदरिंग है कैसी, अगर अच्छी है तो उसको इख्तियार कर लीजिए, अगर अच्छी नहीं है तो उसको इख्तियार ही नहीं करना है।
माशाल्लाह,
अच्छा, अब आप चले गए जरा महफिल के अंदर, अब जैसे वालदेन बैठे हुए हैं, है? अब वालदेन अगर बैठे हुए हैं तो अब किस तरह से, जैसे गैदरिंग के अंदर जो है वो आने के भी उसूल बताए गए हैं, जाने के भी उसूल बताए गए हैं कि जब आते हैं तो सलाम करना है, और फिर जब गैदरिंग में बैठे हैं, महफिल में बैठे हैं, मजलिस में बैठे हैं, तो बैठने के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है, और अगर दौरान महफिल उठ के चले गए हैं उसका भी, कि जनाब इजाज़ लेकर और फिर सलाम करके रवाना होते हैं। अच्छा, अब वालदेन अगर पहले से मौजूद हैं और आप जा रहे हैं उनकी गैदरिंग के अंदर बैठ रहे हैं, तो पहले जाते सार सलाम करेंगे और बड़ी मोहब्बत के साथ उनके साथ बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद गुफ्तगू शुरू करेंगे ना, तो वालिद साहब हैं तो उनकी दस्त बोसी कीजिए, वालदा हैं तो जहर नसीब की उनकी कदम बोसी कीजिए, हैं कि वालिद का हाथ चूमना भी बड़ा अजर है, और वालदा की तो कदम बोसी की बरकतें बरकतें हैं। ये रिवायत में मौजूद है कि जिसने अपनी माँ के कदमों को चूमा गोया उसने जन्नत की चौखट का बोसा लिया, और हमारे पीर मुर्शिद फरमाते हैं जन्नत की चौखट को चूमेंगे तो इंशाल्लाह दरवाजा भी खुल जाएगा।
क्या बात।
अच्छा, अब वालिदैन ये है अगर बैठे हुए, अगर वालिदैन आए, अब शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत ने भी तरबियत फरमाई, और जो हमारे नेक आमाल का जो रिसाला है उसने अमीर आले सुन्नत में घर के अंदर गैदरिंग के आदाब भी
सही,
यानी घर में कैसे रहना है, और उसमें जैसे बिलफरज के 15 मदनी फूल जो है उसके अंदर लिखे हैं कि आपने घर के अंदर दीनी माहौल कैसे बनाना है, तो अब उसके अंदर इस तरह की बात भी है कि जब वालिदैन आए तो ताजीमन खड़े होकर उनका इस्तकबाल करना है।
सुभानअल्लाह।
तो ये ताजीमन खड़ा होना ये भी कार्य सवाब है, और इस्तकबाल करना इस अंदाज में, यानी थोड़ा पता चले कि वालिद साहब आ रहे हैं, वालदा आ रही हैं, उनको भी पता चले कि कौन आ रहा है, और देखने वालों को भी पता चले, एक गर्म जोशी का सा माहौल हो कि जनाब आपके वालिद साहब तशरीफ लेकर आ रहे हैं। तो वालिदैन जब आए खड़े होकर, ताजीमन खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया जाएगा, और फिर क्या है, आए अब्बा जी यहाँ बैठे, अपनी जगह पर उनको बिठाया जाएगा, अपनी जगह पर उनको बिठाएं। अच्छा, अब वालिदैन जो हैं उनको अपनी जगह बिठाए। अच्छा, अब वालिदैन उलामा मशायख, अभी वालिदैन की बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग हैं उलामा मशायख, तो जब इनकी बारगाहों में बैठेंगे अपनी आवाजों को पस्त रखेंगे।
वाह,
आपकी आवाज जो है अपने वालिद की आवाज से बुलंद नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज अपनी वालदा की आवाज से बुलंद नहीं होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत हमारी फरमाई है, फरमाया कि वालदेन के सामने कैसे होना चाहिए, फरमाया ऐसा होना चाहिए बच्चों को अपने वालदेन के सामने जैसे एक जर खरीद गुलाम अपने आका के बारगाह में होता है।
क्या बात,
जर खरीद गुलाम,
क्या बात।
तो इस अंदाज में जनाब वो बैठे और अदब और एहतराम के साथ आवाज ऊंची नहीं, अच्छा नजरें मिलानी नहीं है,
आए, आए,
निगाहें झुकाकर बात करनी है,
आए,
अच्छा वालिदैन जो है जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो अब इन चीजों को देखना है कि किन चीजों को वो अच्छा समझते हैं, किन चीजों को वो अच्छा नहीं समझते हैं। अच्छा, एक तादाद है वालिदैन की, और वैसे भी आम रूटीन के अंदर मोबाइल फोन दौराने जो है वो सोहबत, दौराने मजलिस, दौराने महफिल, दौराने गुफ्तगू, ठीक है ना, मोबाइल फोन यूज करने के अमूमी तौर पे वालदेन, और वैसे तो ये सभी इसको कोई अच्छा समझता नहीं है तो, लेकिन यूज हो रहा होता है। खैर, जब वालदेन के पास बैठे हों तो वो देखना है कि किन चीजों से वो खुश होते हैं और किन चीजों के करने से वो खुश नहीं होते हैं। अगरचे वो मना करें ना करें, लेकिन आपने वो समझना है कि किन चीजों को वो अच्छा समझते हैं। तो जब वालदेन की सोहबत में हो, जब वालदेन के साथ बैठे हुए हो, जब गैदरिंग के अंदर हो वालदेन की, तो उस वक्त ये चीजों का ख्याल रखना है। अगर मोबाइल फोन यूज करने के वो अच्छा नहीं समझते हैं तो मोबाइल फोन पहले ही जेब में डाल के जाएं भाई, उनके सामने निकालना ही नहीं है। अच्छा, अब उनके सामने वो वाली गुफ्तगू करें कि जो उनको पसंद आती है, उनके जौक के हिसाब से अच्छी गुफ्तगू करें, और ज़हर नसीब कि हम अपनी हर मजलिस को ही इल्मी दीन की मजलिस बना लिया करें। अगर वालिदैन के पास बैठे हुए हैं तो वहाँ भी कुछ कुरान की बात हो जाए, कुछ हदीस की बात हो जाए, कुछ इल्मे दीन की बात हो जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की बात हो जाए। तो अगर यूं हो गया ना कि वालिदैन के साथ बैठे, बहन भाइयों के साथ बैठे, अजीज व अकारीब के साथ बैठे, दोस्त अहबाब के साथ बैठे, और हमने कुछ इल्म दीन की गुफ्तगू कर ली, और उस महफिल को, उस मजलिस को अगर हमने इल्म दीन सीखने सिखाने की मजलिस बना लिया, अगर इल्म की मजलिस बना लिया, तो इल्म की मजलिस की फजीलत क्या है कि अल्लाह तबारा का वताला ये करम से कि फरमाया कि इल्म दीन की मजलिस में हाजिर होना, हजार रकअत नवाफिल पढ़ने, हजार मरीजों की इयाद करने और हजार जनाजों में शरीक होने से अफसल है।
क्या बात।
और इल्म दीन की मजलिस को अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं।
वाह।
तो ये फिर और बाबरकत हो जाएगी। तो हम अपनी महाफिल को पहले देखें कि महफिल में जाना कैसा है, वो महफिल कैसी है, अगर अच्छी है तो जाएंगे, अगर अच्छी नहीं है तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही जो है वो जिनकी गैदरिंग में बैठ रहे हैं वो लोग कैसे हैं, अगर हमसे मरते हैं बड़े हैं, उलमा हैं, मशायख हैं और इसी तरीके से वालदेन हैं, तो उनके पास बैठने के, उनके साथ उनकी सोबत इख्तियार करने के, उनकी महफिल में बैठने के आदाब कुछ और होंगे, उनकी बरकतें जो है वो लेनी चाहिए। अगर हम घर में ऐसा माहौल बना लें तो अल्लाह ने चाहा तो घर हमारा जो है वो अमन का गहवारा भी होगा और मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देने का जरिया ही बनेगा।
वाह जी वाह, क्या बात है। हमारे सैयद कजाफी शाह साहब मदनी, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई और अपनी गुफ्तगू में बड़ा ज़बरदस्त अहाता किया ये, कि वाकई इन बातों को अगर हम याद रखें कि वालिदैन बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वाकई इनके पास तो बैठने में एक अदब का मामला और बढ़ जाता है। बहुत माशाल्लाह डिटेल में फरमाया कि निगाहें भी नीची हो, उनकी आवाज़ से आवाज़ ऊपर भी ना हो, पस रहे, एक अदब का मामला, आएँ तो ताज़ीमन खड़े हो जाएँ, अपनी जगह बिठाएँ, ये उनकी बात ना काटें और उनकी सुने। इस पर खालिद मदनी भाई, मुझे जब सैयद साहब ये फरमा रहे थे तो मुझे एक डॉक्टर साहब की बात याद आई कि हम मदनी काफ़िले में थे तो वहाँ कुछ बड़ी उम्र के भी थे, 40+, 50+, इसके आसपास 60 के आसपास भी कुछ लोग थे, हल्का लगा हुआ था। तो एक मुबल्लिग समझा रहे थे वो जदवल जो भी चलता है, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि अली भाई सीखने सिखाने में मुबल्लिग तो अपनी जगह सिखाएं लेकिन कुछ इनकी भी सुना करें, यानी कि कोई रिपीट करवा लें कुछ ही इस तरह। बोला 40 साल के बाद इंसान का सुनने का स्टेमिना, सबका नहीं लेकिन एक तादाद, सुनने का कम होता है बोलने का ज्यादा होता है, कि मैं भी कुछ बोलूं। तो बोला आप जो समझाते हैं, एक मुबल्लिग, दूसरा मुबल्लिग, तीसरा मुबल्लिग, तो इनको भी कुछ बोलने का मौका दें, हल्के में बैठे अंदर सीखेंगे भी, इनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। तो बाज़ूकात वाकई मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन बाज़ लोग का होता है कि बस मैं ही बोलूं, बाज़ तो वाकई बोलते हैं तो मज़ा आता है और बाज़ बोलते हैं तो लगता है कि ये कब अपनी गुफ्तगू ख़त्म करें, और बेजारियत होती है, बोरियत होती है, और वो महफिल में अजीब एक मामला होता है। बाज़ अगर दोस्तों की महफिल है तो उसमें बाज़ का होता है कि वो पूरी महफिल में छा जाते हैं, छा जाने से मुराद ये होता है कि सबकी तवज्जो अपनी तरफ करके किसी को बोलने नहीं देते, ये बारी बारी सब बोलें। और बड़ी ज़बरदस्त एक बात और सैयद साहब ने फरमाई, वालदेन बुजुर्ग और ये तो अपनी जगह हैं, आम महफिल के अंदर भी आपके भी तजर्बात होंगे, हमारे मुबल्लिगीन के, मदनी चैनल के नाजरिन के भी तजर्बात होंगे, अब बैठे हैं, महफिल है, मजलिस है, अब बैठे बैठे जी, हाँ हाँ जी, अब लोगों के दरमियान बैठे हैं, अगर आपने इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट काम है तो अलग बात है, तो माजरत कर लें कि ज़रा सॉरी मैं इसको देख लूँ, ये कुछ मेरा अर्जेंट मैसेज आया है, लेकिन लोग बातें कर रहे हैं, आप मोबाइल में लगे हुए हैं, तो ये भी एक आदाब के ख़िलाफ़ है ये, बल्कि मोहज़ब लोगों को देखा है खालिद भाई, भाई बात कर रहे हो ना, बात काटना वैसे ही मना है कि बात नहीं काटनी चाहिए, तो वो सॉरी कह के माजरत, ज़रा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बड़ा प्यारा अंदाज़ होता है, मोबाइल आता है, मैंने कई लोगों को देखा है कि कॉल आएगी उनको अटेंड अगर करनी है, सॉरी ज़रा माजरत मैं कॉल अटेंड कर लूँ, ठीक है, लगता ही है। और बाज़ लोगों को लगता है कि पता नहीं उनकी इनकमिंग आउटगोइंग फ्री है, लोग बात कर रहे हैं और वो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं या बात कर रहे हैं, अब जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चेहरा है तो एक बात करने में मज़ा भी आता है, आप बात मुझसे कर रहे हैं मैं देख वहां रहा हूँ, तो बोले यार क्या है ये। तो वाकई महफिल के, मजलिस के आदाब तो पूरे हैं ये,
बिल्कुल होने चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि मैं आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छा अफराद ऐसे बैठे हुए हैं तो वो बात सुनते सुनते अचानक कुछ बोलना शुरू कर दिया जिसका सारे फलसफे में, सारे बयान में कहीं जिक्र ही नहीं था, तो तवज्जो दी, भाई क्या हो गया, क्या किससे कह रहे थे? नहीं यार वो व्हाट्सएप रिकॉर्ड करवा रहा था, मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा था। इस तरह के जो अंदाज होते हैं ये जस्टर ये देते हैं कि आपको महफिल के आदाब नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल में इस तरह होता कि हुज़ूर खुद अपने सहाबा की एक तो महफिल सजाया करते, कभी ऐसा भी होता कि मुख्तलिफ वफूद नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते, मुख्तलिफ गिरोह आते, किसी इलाके से आ गया, किसी कबीले से आ गया, तो यूं भी हुआ और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे भी आदाब सिखाए। एक गिरोह आया, एक कबीला आया नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो वो सब के सब ना गुफ्तगू करने लगे, सब ने कहा क्या हम आए हैं हुजूर की बारगाह में तो अब हम बात करेंगे। जब यूं बात करने लगे तो शोर हुआ जिसकी वजह से किसी की भी आवाज समझ में नहीं आ पा रही थी, या जो बोलना चाह रहे थे हुजूर, जिसकी तरफ तवज्जो फरमाना चाह रहे थे, उसकी आवाज नीचे रह रही थी, बाकियों की ऊपर आ रही थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको महफिल के आदाब बयान फरमाया, उनसे इरशाद फरमाया कि आप लोग सब यहाँ आए हैं, आप लोगों में से बड़ा कौन है?
वाह।
तो सबने कहा कि हमारे कबीले का तो फुलां बड़ा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि
क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की नुमाइंदगी कोई एक बंदा करे?
वाह सुभान अल्लाह,
क्या तरीका
हालांकि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो यूं भी हुजूर के दरबार में ये आए ना, शाही दरबार के आदाब यूं भी सिखाए जाते हैं कि बाहर से ही बता दिया जाए, एक बंदा जरा जाए और तरीके की गुफ्तगू करे।
सही बिल्कुल।
लेकिन ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल है जहाँ पर पूरी तवज्जो लेकर महफिल के आदाब ऐसे बयान किए गए कि उठने वाला भी कहे कि हमारी बात काटी नहीं गई, हमें छोटा नहीं कहा गया, हमें छोटा नहीं किया गया। दोनों तरह से इस बात को देखें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मौका यूं भी था कि जब लोगों ने कहा कि ये जो बुजुर्ग हैं ये हमारे कबीले के बड़े हैं ये बात करेंगे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा भी मुकर्रर फरमाया कि तुम में से ये नौजवान ऐसा लगता है कि अपनी बात पहुंचाने की ज्यादा सलाहियत रखता है, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया इस नौजवान को सरदार बना और इसके जरिए से पैगाम पहुंचाओ। तो यूं जब हम कहीं मिलने के लिए जाते हैं, कहीं बातचीत करते हैं, तो वहां पर सबके सब का बोल पड़ना, कहीं हम आपसी बातचीत में बैठे हैं, किसी के पास कोई ख्वाहिश या कोई फरमाइश लेकर नहीं गए, हम आपस की दोस्तों की बैठक में, उसमें भी अगर सबके सब बोलेंगे तो एक बाजारी महफिल हो जाएगी, शोर और गोगा होगा, देखने वाला ये सोचेगा कि यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारा अंदाज ये होगा कि एक बंदा बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं, या किसी को बोलना है तो इजाजत ले ली जाए बोलने की,
बहुत प्यारी,
मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, मेरी समझ में ये आ रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल के मुख्तलिफ अंदाज बयान किए गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बंदा पढ़े तो उसे जिंदगी गुजारने का सलीका मिलता है।
क्या बात।
नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक अंदाज ये भी बयान किया गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम महफिल में हाजिर होने वाले सारे अफराद को बोलने का बराबर मौका दिया।
क्या बात, कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है, माशाल्लाह, आका का दरबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबको बोलने का मौका दिया जाए।
एक रिवायत बड़ी मशहूर है, मदनी चैनल के नादरीन ने कई मरतबा हो सकता है सुनी हो, लेकिन जरा इस तरफ इसे फोकस कीजिए कि ये महफिल के आदाब नबी पाक अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे। आम तरीकाकार ये था कि महफिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कुछ अता फरमाते, कुछ तकसीम फरमाते, तो वो दाएं जानिब से शुरू।
वाह।
और एक अदब ये भी था कि जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के अफराद हैं, उनसे नबी पाक अलैहिस्सलाम पहल फरमाते।
वाह।
एक दफा दोनों चीजें जमा हो गई महफिल में।
वाह।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ नोश फरमाया प्याले में और उसके बाद वो प्याला आगे बढ़ाना था कि बाकी अफराद भी पिए, तो जो दाएं जानिब सबसे करीब बैठे थे ना, वो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कम सिन कम उम्र साहबी थे, और जो बाएं जानिब बैठे थे वो बड़ी उम्र के अफराद थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज देखिए कि दाएं जानिब से पहल फरमाना, इब्तिदा फरमाना, आगाज फरमाना, ये ज्यादा पसंदीदा था क्योंकि यहाँ बच्चा बैठा था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इस नौ उम्र बच्चे से ये पूछा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये बड़ी उम्र के साहबी से शुरू कर लूं, बाएं जानिब से शुरू कर लूं। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम कैसे उसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और इस महफिल में आने के बाद वो अपने आप को छोटा नहीं समझ रहा कि मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे तो कोई पूछा ही नहीं जाएगा, मैं तो इसे कोने में पड़ा रहूंगा।
कुल है आका का दरबार है और कैसी आजजी, कैसे इजाजत का फरमा रहे, क्या बात है।
और बच्चा देखें कितना प्यारा है, साहबी का बेटा है और नबी के तबर्रुक का मामला है, तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे जो चाहे आप करें लेकिन मैं आपके तबर्रुक पर किसी को तरजीह नहीं देता।
बात है, वो भी दीवान गया, वो भी उनकी।
तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह मुझे दे दीजिए। अच्छा, फिर यूं नहीं हुआ कि हुजूर ने फरमाया चलो भाई पूछा था काफी हुआ, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीकेकार। हम भी अगर इसे अपनी जिंदगी में ले आए ना तो बहुत सारी चीजें हमारी घर सुकून का गहवारा बन जाए, एक छोटे छोटे मौके पर ये एहसास होता रहे कि हमारे लिए किया जा रहा है। आप अली भाई देखते होंगे नौजवानों का एक गलत शिकवा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, वो किया क्या है को पता नहीं, क्या समझते हैं कि कितनी लंबी लिस्ट होगी, क्या चीज होगी, कौन सी इमारतें हमारे लिए तामीर होंगी। अगर हम दस्तरखान पर सिर्फ ये माहौल रखें ना कि गिजा का उमदा हिस्सा वालिदे गिरामी अपने हाथ से निकाल कर अपने बच्चे को दे दे, तो ये हर खाने के वक्त रिकॉल होगा कि आपका बाप आपके लिए आज भी ये करता है कि अच्छी चीज आपके लिए निकाल के रखता है।
सही।
फिर ये जब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे ना, तो फिर दोनों को एक दूसरे की तबीयतों का एहसास होगा। यहाँ वालदैन अलग खाना खा रहे होते हैं, बेटों ने बच्चों ने अलग खाना खाना है, कभी इस तरह से मिलनसारी का माहौल ही नहीं बन रहा, तो वो एक दूसरे की मोहब्बतें भी दूर होती चली जाती हैं, अपनाइयतें भी दूर होती चली जाती हैं, फिर क्या मजलिस और क्या आदाब।
ये फरमा रहे
जब گیدرنگ ایسے رہی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے مل کر کھانے کی بشارتیں ارشاد فرمائی.
واہ، اس کی فضیلت برکت
پر مل کر کھانا، ایک تو وہ فضائل ہیں جو قیامت میں عطا ہوں گے، دسترخوان میں برکت، رزق میں برکت وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے ایک خاندان میں، معاشرے میں اور گھر میں جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ہم ایک دوسرے کے مزاج کو اور انداز کو سمجھ پائیں گے، اس کا بیان ہی اور ہے. آپ ایک دوسرے سے کلوز ہو جاتے ہیں تو بھی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا برا لگے گا، کیا اچھا لگے گا، پھر ہی تو اس کا خیال رکھ پاتے ہیں. لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کو میری روٹین پتہ ہے، نہ مجھے آپ کی پتہ ہے، ہم ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں، تو ہم کب ایک دوسرے سے آشنا ہوں گے؟ پھر کبھی اگر کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو مجھے آپ کی حدود نہیں پتہ، آپ کو میری حدود نہیں پتہ، میں وہ بات کروں گا جو آپ کو بری لگ رہی ہوگی، آپ وہ کریں گے جو مجھے بری لگ رہی ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے ٹائم بعد ایک ہی گھر کے رہنے والے محبت سے ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور اٹھتے اٹھتے ناراضگیوں کے ساتھ اٹھ گئے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل کا یہ انداز دیکھیے کہ چھوٹے کو بھی نوازا، بڑے کو بھی نوازا، اور بڑے کو بتا دیا کہ چھوٹے کے ساتھ کیا کیا جائے. چھوٹے کو بتا دیا کہ بڑا ہو تو اس کی بھی اہمیت پوری ہے، اس کو بھی دینی چاہیے.
میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا، ہمارے خالد بھائی نے جو فرمایا بھی ہے کہ ایک ساتھ گفتگو کرنا، سب ایک ساتھ بولنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مجلس کا بھی حوالہ دیا، اور کتنا پیارا انداز تربیت کا، کیا کہنا ہے آقا کی شان کے. آج کل ہم دیکھیں اسپیشلی جہاں قریب قریب گھر تو قریب قریب ہی ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ گھر وہاں ایک گھر وہاں کو، پہاڑ پہ تو ہم رہتے نہیں، پہاڑ پہ رہنے والے ہیں اپنی جگہ. اسی طرح کراچی یا بڑے شہروں میں فلیٹ سسٹم ہے، جب گھر کے 4, 6, 8, 10 افراد جمع ہوتے ہیں، یا کوئی مہمان آ جاتے ہیں، یا گھر میں کوئی تقریب ہے، یا کوئی شادی بیاہ ہے، اتنا مل کر لاؤڈلی بولتے ہیں، اتنا شور و غل ہوتا ہے کہ پوری بلڈنگ کے اندر لگتا ہے کوئی طوفان آ گیا. سونے والا سو نہیں سکتا، پڑھنے والا پڑھ نہیں سکتا، بیمار جو ہے وہ دوائی لے کے آرام نہیں کر سکتا. تو اپنی آواز بھی نارمل رکھیں، بیٹھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. پھر خواتین، اسلامی بہنیں، یہ بھی بیٹھتی ہیں، ان کی تو محفل کو لمبی لگتی ہے. کہتے ہیں نا خواتین بیٹھ جائیں تو بیٹھنے کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات کرنے کے بعد، سب ایسی نہیں ہوتی ہوں گی، ناراض نہیں ہوئیے گا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات کرنے کے بعد کہیں بہن ابھی تو کچھ بولا ہی نہیں، چلیں پھر کبھی بیٹھیں گے. پھر نکلتے نکلتے دروازے پر آدھے گھنٹے کی محفل اور لگ گئی، چلو ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بعد میں. تو خواتین ٹھیک ہے، آپس میں ملتی ہیں، شریعت کے دائرے میں بات چیت بھی کریں، اخلاق کا دامن بھی نہ جائے اور آواز بھی گھر سے باہر نہ جائے، اس کی بھی احتیاط کی جائے. اسی طرح یہ ٹاپک جو لیا تھا ہمارے سید صاحب نے کہ محفل کے اندر موبائل کا استعمال، اس کی بھی احتیاط کی جائے کہ موبائل جب یوز کریں گے تو وہ محفل میں تو اب کٹ گئے نا، یہ اگر آپ نے موبائل کے ساتھ ہی رہنا ہے تو اپنا موبائل لے کے تنہا بیٹھ جائیں، تو اس کی بھی احتیاط کی جائے. والدین بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، کوئی بھی ایسی گیدرنگ ہے یہ. اسی طرح میت میں کہیں گئے، جنازہ تھا، میت تھی، اب وہاں بیٹھ کر آپ ہنس رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، یا کھی 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 کر رہے ہیں، آپ دانت نکل رہے ہیں، اور یہ موقع نہیں ہے مسکرانے کا، تو مسکراہٹ وہاں حاجت نہیں ہے، بلکہ میت میں گئے وہاں لوگ افسردہ ہیں، غم زدہ ہیں، وہاں نارمل کنڈیشن میں بیٹھیں، اسال ثواب کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، نیکی کی بات کریں. اسی طرح مریض ہے تو مریض کے پاس لوگ جاتے ہیں، کیا یار جانا پڑے گا، فلاں بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، پورا کے پورا جلوس جاتا ہے. اب ثواب کی نیت سے ہی جانا چاہیے، اب ہم اپنے دل پر غور کر لیں کہ ثواب کی نیت سے گئے تھے کہ حاضری لگانے، فلاں بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، جانا پڑے گا، چلو سب چلتے ہیں. پتہ چلا مریض بیچارہ کہ ابھی دوائی لے کے لیٹا تھا، جا کر سب اس کو لیکچر دیتے ہیں، آپ اپنا آرام کا خیال رکھیے گا، آپ آرام کیجیے گا، اور پتہ چلا کہ سب نے جا کر اس کے پاس بیٹھ کر مریض کا ایسا حل کر دیا کہ وہ کمر کے درد کا مریض تھا اور اس کی کمر کا درد بڑھ گیا، اس نے آرام کی دوا لی تھی، اس آرام کے اندر غنودگی تھی، مریض کی بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، جھوم رہا ہے، اور ہم بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں. تو مریض کے پاس بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ اتنی لمبے ٹائم کے لیے نہ بیٹھ جائیں، یا بعض اوقات مریض کے پاس بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنی کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ بیزار ہو جاتا ہے.
علی بھائی، اس نے تھوڑا سا مریض کے پاس جانے کے حوالے سے نا کچھ تجربات ایسے ہوئے ہیں، یعنی مریض کے پاس بیٹھ کے اس کی ڈھارس بندھانی چاہیے.
واہ،
وہاں پہ جا کے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے،
فلاں مر گیا تھا، فلاں مر گیا تھا،
حضرت وہ فلاں کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا تھا، فلاں کو ہوا تھا، وہ بھی مر گیا،
ये भी मर गया।
आप जिस मरीज के पास गए हुए हैं उसके पास जाके उसको दिलासा देना है,
बहुत प्यारी बात,
ढारस देनी है, वहां जाके ऐसी गुफ्तगू शदीद नहीं करनी है कि वो कहते हैं ना कल मरता गया वो आज ही मर जाए बेचारा। तो इसका भी जो है ना गैदरिंग का भी एक अदब एहतराम है, वहां पे गुफ्तगू क्या करनी है, वो माथे पे हाथ रख के लाबासा तुहूर इंशाल्लाह दुआ है, और उस टाइम पे उसकी दिलजोई का सामान करना है, अल्लाह की रहमत वो जो है उसके लिए दुआ करनी है, उसके लिए उसकी ढारस बंधानी है, उसकी टेंशन कम करनी है, टेंशन रिलीज करनी है, टेंशन बढ़ा के नहीं आ जानी है।
ये बड़ी प्यारी बात फरमाई आपने। अच्छा ये भी होता है कि किसी मजलिस महफिल में बैठे ना तो कोई एक मौजू चला, बिलफर्ज कोई मरीज का ये वाकया चला, अब सबको मरीज के वाकयात याद आएंगे। अच्छा ये हमारे साथ भी होता है, हम प्रोग्राम में बैठे हैं, आज हमारा टॉपिक है तो हमें भी ये वाकयात याद आ रहे हैं, अब सब माहिरीन अपनी अपनी राय देंगे उस पर, वो लंबा चलता रहेगा ये। इसी तरह कहीं वो कोई हादसे का आ गया, कोई डकैती का वाकया आ गया तो सबको अपने वाकयात याद आएंगे। तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन लिमिटेशन भी रखें टाइम की, बैठ गए तो बैठ ही गए, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, किसी के घर पर गए, बल्कि मुझे एक वाकया याद आया कि किसी के यहाँ इंतकाल हुआ तो अब वो ताज़ियत के लिए लोग आए, अब ताज़ियत के लिए आए तो दोपहर को आ गए, चलो खाना वगैरह जो भी था रिफ्रेशमेंट, शाम हो गई, शाम का भी हो गया, रात हो गई, रात का भी हो गया। अब जिनके घर पे गए वो घड़ियां देख रहे हैं बेचारे परेशान के क्या, अच्छा वो रोज आने वाला अपनी सहूलत से आए, चार चार छः छः आठ आठ दस दस आ जाए, अच्छा बात कर रहे हैं, उस वक्त तो वाकई फील नहीं होता। तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन कहीं आयादा ताज़ियत के लिए भी जाएँ तो एक लिमिटेशन तो रखें ना कि मैंने इतने बजे जाना है, इतने बजे उठ जाना है। अच्छा ये भी एक है कि कहीं जाएं, खैर आने जाने का वो आदाब में आ जाएगा ये, लेकिन गैदरिंग महफिल तो जम ही जाती है
जी।
अब मैंने तो तकरीबन अपना रूटीन ये बना लिया है, किसी के यहाँ भी जाऊं तो मैं कोशिश करता हूँ पहले कॉल करके पूछ लूँ वो घर पे हैं कि नहीं है। इंसान है, मसरूफियत भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है। अच्छा अच्छा फिर अचानक पहुँच गए, वो किसी इमरजेंसी में है, तो हमारे यहाँ भी बाज़ लोग आ गए, जैसे बिलफर्ज
जी
आ गए, बोला आप मिले नहीं, अब दो ढाई अफराद तीन अफराद अब घर में बचे हैं, अब कोई आ गया और नहीं कोई घर में, अब आने वाले के लिए भी आजमाइश। तो खैर ये महफिल के आदाब से मुराद चलो कि महफिल जमाने भी गए तो सामने वाले की भी सहूलत देखें कि जिसके हम जा रहे हैं उसके लिए आसान टाइम कौन सा, मरीज है तो बाकी। ये बात भी मरीज से याद आया, कई हॉस्पिटल में मुलाकात के टाइमिंग होते हैं। अच्छा हम जैसे उनको बाज लोगों को नागवार गुजरता, क्या यार तीन से पाँच हम तो जा ही नहीं सकते, तो मरीज के लिए भला इसमें कि भाई तीन से पाँच जिसने आना है मिलके चला जाए ये। अच्छा अब रात को जा रहे हैं 11 बजे 11:30 बजे 12 बजे, हजरत उठिए आपने दवाई ली थी, हम आयादत करने आए, अब सो गए, अब उठिए हम आपसे ताज़ियत करने के लिए आए हैं। तो कहीं भी बैठे हैं करें तो इसका सब लाजमी देखें कि हमने कब जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या गुफ्तगू करनी है। फिर महफिल मजलिस के आदाब भी ये हैं कि बाज़ लोगों को खुद पता नहीं होता, या तो कोई ऐसा खैर ख्वाह बना ले अपना कि वो आपकी बुरी आदत आपको बताएं। बाज़ औक़ात हमारे जुमले हमारी वर्डिंग हमें अंदाजा नहीं होता, ऐसे निकलते हैं कि अंदाजे गुफ्तगु चुभने वाला होता है, लोग बेजार हो जाते हैं। तो किसी खैर ख्वाह को कह दें जो खैर ख्वाह हो वो अच्छे अंदाज में समझा दे कि यार आपकी ये बात ठीक नहीं थी। इसी तरीके से बेहयाई की तरफ ना जाएं, इसी तरह कहीं बैठे हों लोगों के दरमियान तो ये बाकायदा अमीर अहले सुन्नत ने भी तरबियत फरमाई है और ये महफिल के आदाब में से हैं कि इस तरह के आमाल करना के लोगों को किराहियत हो, थूकना या बार बार जो है वो नाक में हाथ डालना या इस तरह के अपने जिस्म के आज़ा पर हाथ लगाना जो महफिल में अच्छे नहीं समझे जाते, मायूब समझे जाते हैं। अच्छा बैठने में भी महफिल में बैठे हैं तो अपना कुर्ता वगैरह ठीक कर लें, पता चला कोई एक पाइचा ऊपर है तो पता चला एक कमीज़ ऊपर हो गई है, तो एक अच्छे अंदाज में बैठें, बोलें तो अच्छा बोलें, सुने तो भी तवज्जो के साथ सुने किसी की बात, तो इंशाल्लाह ये माहौल एक बनेगा और फिर अल्लाह करे हमारी महफिल अल्लाह वालों का सदका मिल जाए, अल्लाह के नेक बंदों का सदका मिल जाए कि हमारी महफिल जो है वो खौफ़े खुदा वाली हो, इश्क़े रसूल वाली हो, दिक्कत वाली हो, फिक्रे आखरत वाली हो, नेकी की दावत वाली हो, जब कोई बंदा उठे तो नेकियों की खुशबुएं लेकर उठे। कहते ना कि अच्छी सोहबत अच्छी गैदरिंग ऐसी है कि गोया इत्र की दुकान, इत्र ले ना ले खुशबू जरूर उसको आ जाएगी, खुशबू से नफा ले लेगा। और बुरी महफिल बुरी सोहबत ये ऐसी है जैसे कोयले की दुकान, कि कोयला ले ना ले कोयले की दुकान में जाएगा या तो हाथ काले होंगे या कोयले के जर्रात उड़ के कपड़े काले कर देंगे, या गोया भट्टी एक कि उसकी चिंगारियां उड़ के जला देगी। तो अपनी सोहबतें भी देखें क्या है, جہاں فواہشی کی باتیں ہوتی ہوں، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہوں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس صحبت کی طرف بھی ہمارا ٹاپک چلا جائے گا. ٹاپک وہ نہیں ہے، لیکن محفل سے صحبت تو ملتی ہے نا. اب کوئی تو شخص ایسا ہے آج جو نشہ کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، ہیروئن پینے والے ہیں، چرس پینے والے ہیں، بدکاریاں کرنے والے ہیں، کیا ماں کے پیٹ سے ایسے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. ان کو ایسی صحبت ملی، ایسی محفل ملی، ایسی مجلس ملی، ایسی گیدرنگ ملی کہ جہاں یہ جا کر بیٹھے. دیکھیں سگریٹ، اگرچہ اس کا جو بھی شرعاً حکم ہے، لیکن معیوب تو سمجھا جاتا ہے نا اس کو. کسی نے تو سگریٹ پینے والے کو پہلا کش لگوایا ہوگا، ارے پی لے پی لے، ڈرتا ہے، پی لے ایک کش. یہی سگریٹ کا پہلا کش لگوانے والا اس کو پھر چرس کا کش لگوائے گا، پھر ہیروئن پلوائے گا. اسی طرح ڈکیتی کرنے والے جان سے مار دیتے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں، تو کسی نے تو اس کو پہلا فائر کرنا سکھایا ہوگا، ڈکیتی کرنا سکھائی ہوگی. یہ کون لوگ ہیں جو بے حیائی کی باتیں، فواہشی کی باتیں، چوری، ڈکیتی، شراب، جو شراب آج شرابی کہلاتا ہے، شراب پیتا ہے، کسی نے تو اس کو شراب کا پہلا گھونٹ پلایا ہوگا کہ پی، کیوں ڈرتا ہے، پی لے. اور آج کل تو کیسے کیسے نشے، آئس کا نشہ، دیگر نشے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پہنچ گئے. تو اپنی صحبت دیکھیے، اپنی گیدرنگ دیکھیے، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے کہ آپ کس میں بیٹھ رہے ہیں، کس میں اٹھ رہے ہیں. والدین سے میں عرض کروں گا، گھر کے جو بڑے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھیے. آج جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں نوجوان، کسی ماں کے تو بیٹے ہیں، کسی باپ کے تو جگر کے ٹکڑے ہیں. کیوں ان کی تربیت نہیں کی؟ کیوں ان کو ایسی صحبت سے نہیں بچایا؟ ہم اپنی مستی میں لگے رہے، وہ اپنی مستی میں لگے رہے، پھر یہ ہاتھ سے نکل گئے. اور آج آپ دیکھیں معاشرے کا ایک طبقہ نشے کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے، جوا، گندی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں. تو اپنی صحبتیں، اپنی مجالس، اپنی گیدرنگ، اپنا ماحول اچھا کیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہم ایک ویڈیو کلپ بھی لیتے ہیں، تو آج ایک زبردست ویڈیو کلپ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے گا.
یہ سردیوں میں جو موڈ تبدیل ہوتا رہتا ہے، رولر کوسٹر بنا ہوتا ہے، کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی بالکل بیٹھ جاتا ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. دیر از اے سائنٹیفک ایکسپلینیشن فار دیٹ، اس کی ایک سائنسی وجہ ہے، اور وہ ہے سیڈ، SAD، سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر. یہ جو اس کی وجہ ہے، سورج کا نہ نکلنا یا کم نکلنا ہے، تو یہ ایک ونٹر ڈپریشن کی ٹائپ ہے. نیند زیادہ آتی ہے اور بھوک زیادہ لگتی ہے، ایسے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنی غذا کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں. ویسے یہ ٹھنڈی ہوا، یہ کلیئر، کلین اور ڈرائی ہوتی ہے، صاف ہے اور خشک ہے، اور شدید گرمیوں کے بعد جب یہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، انسان کو ویسے بھی بہت زبردست لگتا ہے. یاد رہے، کم درجہ حرارت میں نیند زیادہ اچھی آتی ہے، 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک آپٹیمل ٹیمپریچر ہے نیند کے لیے. اور ٹھنڈ میں، سردیوں میں، ریفرنشیل کریٹیویٹی یعنی زیادہ اچھا سوچنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. اور پھر سردیوں میں ایک زبردست ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. انسان کے جسم میں دو طرح کی فیٹس ہوتی ہیں، براؤن فیٹس اور وائٹ فیٹس. براؤن فیٹس یہ اچھی ہیں اور وائٹ فیٹس یہ بیڈ فیٹس ہیں. اور ٹھنڈ میں، سردیوں میں، خود بخود یہ وائٹ فیٹس براؤن فیٹس میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہیٹر کے سامنے بیٹھنے کے بجائے گرم کپڑے استعمال کریں، گرم کپڑے جو ہلکے ہوں، اور پھر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ وائٹامن ڈی سپلیمنٹس لیں، کیونکہ سورج نہیں نکل رہا اور سورج وائٹامن ڈی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. کیلشیم سپلیمنٹس لیں، اور ایکسرسائز یعنی انڈور ایکسرسائز، گھر کے اندر رہ کے واکنگ اور دیگر ایکسرسائز، اس کی عادت بنائیں. ونٹر سیزن، سردیوں کے موسم کے بارے میں سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ چیپڈ لپس، کریکڈ ہیلز اینڈ وارم کلوتھس، سوکھے ہونٹ، پھٹی ہوئی ایڑیاں اور گرم کپڑے. لیکن یہ موسم قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہترین ہے، بیکاز باڈی انجن ورکس بیسٹ ان ونٹر اینڈ فوڈ از آلسو بیٹر ڈائجسٹڈ. انسان کے جسم کا جو انجن ہے وہ بڑا زبردست کام کرتا ہے سردیوں میں جناب، اور کھانا بھی بڑا اچھا ہضم ہوتا ہے، اور ہمیں اس کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ گرمی بھی پہنچائے اور غذائیت بھی، وارمتھ اینڈ نورشمنٹ. سو اینی ویجیٹیبل دیٹ ٹیکس ٹائم ٹو گرو اینڈ ان وچ دا ایڈیبل پارٹ از بینیتھ دا سرفیس آف گراؤنڈ is good in winter and is warming. ہر وہ سبزی جس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور جس کا کھانے والا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، یہ گرمی دینے والی ہوتی ہے اور سردیوں میں بہت اچھی ہوتی ہے. گاجر ہے، وائٹامن اے کا خزانہ ہے جناب، اور یہ پیاز ہے، لہسن ہے، ٹیسٹ بھی بڑھاتے ہیں، فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر، اور یہ آلو جو ہے یہ انرجی کا بہت بڑا سورس ہے. مولی ہے، یہ بھی بڑی زبردست ہے. اور یہ ہے ونٹر گرین، پودینہ، پالک، ہری مرچ. लाल मूली, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुव्वत मुदाफियत मिलती है और मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ जिस्म के अंदर एक ढाल बन जाती है। और तीन और ये सुपर फ्रूट्स हैं जनाब, पपीता है, अनानास है और खजूरें हैं। फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और बहुत सी विटामिन्स का यह भी खजाना है। जिस्म को गर्म रखेंगे, गजाइत देंगे। मिल्कशेक बना लें, जूस बनाए या वैसे ही खा लें, सर्दियों में बेहतरीन है। और सर्दियों के बादशाह ऑरेंज को तो बिल्कुल नहीं भूलना, विटामिन सी की पहचान है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल सीवी भरा पड़ा है गजाइत से। तो रोजाना कम अज कम एक ऑरेंज या इसका जूस मस्ट मस्ट और मस्ट है। और फिर सूप, किचन में जो कुछ पड़ा ना उसका सूप बन जाएगा और एक प्याले के अंदर आपको गजाइत का खजाना मिल जाएगा। और सर्दियों में गर्मियों की निस्बत स्पाइसेस भी ज्यादा खाए जा सकते हैं। मस्टर्ड, एसोफटीडा, हींग जिसे कहते हैं, ब्लैक पेपर, अजवाइन और हल्दी वगैरह, ये नजला जुकाम से बचाते हैं, जिस्म की कुव्वत मुदाफियत में बहुत इजाफा करते हैं। भूख भी ज्यादा लगती है, जिस्म में खून की गर्दिश सही बढ़ती है और खाने को हजम भी ठीक करते हैं। बहरहाल बहुत ज्यादा मसाला जात वो बाज मरीजों के लिए अच्छे नहीं होते, खासतौर पर जिन्हें पेट का मसला हो, तो डॉक्टर से जरूर रुजू कर लीजिए, मशवरा कर लीजिए। और ये जितनी बातें हमने आपसे अर्ज की इन पर अमल करेंगे तो सर्दियों के मौसम में भी इंशाल्लाह जिस्म चुस्त रहेगा और सेहतमंद भी रहेंगे।
मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वीडियो क्लिप आपने जो देखा, अल्लाह पाक इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, नेक आमाल, इस्लाह आमाल, ये भी एक समझ लें कि एक सोहबत, यूं कि जैसे कहते हैं ना, किताब भी सोहबत है, मदनी चैनल भी एक सोहबत है। तो नेकियों की प्रैक्टिस बनाने के लिए नेक आमाल, ये ज़बरदस्त, इस्लामी भाइयों के लिए 72, इस्लामी बहनों के लिए 63, मोबाइल के अंदर भी ये डाउनलोड हो जाता है नेक आमाल की जो एप्लीकेशन है। तो रोजाना नेक आमाल का जायजा लीजिए, डेली वाले भी हैं, वीकली वाले भी हैं, मंथली भी हैं, ईयरली भी हैं, रोजाना, हफ्तावार, माहाना, सालाना, तो ये नेक आमाल अपनी जिंदगी में बसा लीजिए। देखिए आज का नेक अमल क्या है।
15वीं सदी की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत, शेख तरीकत, अमीर आले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी, हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रजवी दामत बरकातहुमुल आलिया ने इस पुरफितन दौर में नेकियां करने और गुनाहों से बचने के तरीकों पर मुश्तमिल शरीयत व तरीकत का जामे मजमुआ 72 नेक आमाल बसूरत सवालात अता फरमाए हैं। 72 नेक आमाल में से एक नेक अमल ये है, क्या आज आपने घर में और बाहर मजाक मस्खरी, तंज, दिल आजारी और कहकहा लगाने यानी खिलखिलाकर हंसने से बचने की कोशिश की? याद रखिए, किसी मुसलमान का बिला वजह शरई दिल दुखाना कबीरा गुनाह है।
तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक बस हमें नेक आमाल का आमिल बना दे। ये नेक आमाल भी हमें जब हमारी आदत बन जाएगी, हम नेक होंगे तो हम फिर नेक सोहबत की तरफ ही जाएंगे, नेक महाफिल की तरफ ही जाएंगे, नेक मजालिस की तरफ ही जाएंगे और इसकी खूब बरकत नसीब होंगी। जी सही साहब।
देखिए, लम्हा भर की भी सोहबत किसी के साथ है, गैदरिंग है, मुलाकात है, तो बरोज़े क़यामत इसके बारे में पूछ की छोड़।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अगर बंदा ये कॉन्सेप्ट बना ले ना कि अभी जो मैं गैदरिंग करने जा रहा हूँ जिसमें शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ, बरोज़े क़यामत इसके बारे में पूछा जाएगा, तो बंदा मोहतात हो जाता है। अच्छा, अपनी गैदरिंग को, अपनी मीटिंग को, अपनी जो मजलिस है, इसको कुछ ना कुछ गेन करने का ना जरिया बना।
वाह वाह।
अच्छा, आप अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका फिजिक्स पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो गैदरिंग है ना वो इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होनी चाहिए। अब अगर अगर जो है वो ये समझ लिए आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं, तो बायोलॉजी वालों के पास बैठने से वो आपको फायदा नहीं मिलेगा उतना कि जो मैथ वाले लोगों के साथ बैठेंगे। ये भी एक लर्निंग का और सीखने का एक जरिया होता है कि हल्का अहबाब ही आप ऐसा रखें कि जिनका जौक और जो तबीयत जो है ना वो उसी तरह की है। अब मैथ वाले के साथ बैठेंगे वहां पे कैलकुलेशन हल होंगी, आप
सही सही
उकदे हल होंगे। जो बायोलॉजी के वालों के साथ बैठेंगे तो वो वहां की बातें करेंगे, जो फिजिक्स वालों की बातें करेंगे वहां की बातें करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपके अपने सब्जेक्ट के अंदर जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपकी ग्रिप बढ़े, तो जो आपकी गैदरिंग है ना वो उस टॉपिक के अंदर जो महारत रखने वाले लोग हैं ना, जो क्लास में टॉपर हैं, जो अच्छे लोग हैं उस उनवान के ऊपर जिनकी ग्रिप अच्छी मजबूत है, उनके साथ बैठने की रूटीन बनाएं, तो वो
जो वहां जब डिस्कशन करेंगे ना, तो वो गेन करने का, कुछ ना कुछ लेने का, कुछ ना कुछ हासिल करने का एक जरिया बनेगा, और अल्लाह ने चाहा तो उस मजमून के अंदर आपकी ग्रिप भी जो है मजबूत हो जाए।
क्या बात है। बाकी ये दुनियावी तौर पर भी अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसे स्किल्स पर्सन के साथ रहें, और ऐसे लोग जो वाकई एक जिसको कहते हैं ना एनर्जेटिक लोग हों, एनर्जेटिक लोग, इनकी सोहबत भी आपको एनर्जेटिक बना देगी। और सुस्त काहिल लोग, मायूस लोग, जो बैठे बैठे ख्याली पलाव या ख्याली ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, करते कुछ नहीं है, रोजाना महफिल जमेगी, चाय के स्टॉल पर बैठेंगे, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, सैंडविच खाया, बर्गर खाया, और बस खा पी के बातें की करोड़ों की, फिर आकर बैठ गए पकौड़ों की दुकान पर, करना कुछ नहीं है। रात जो है वो देर से सोना है, सुबह उठना नहीं है, और रातों रात करोड़पति बन गए, रात को कार भी खरीद ली, बंगला भी ले लिया, सुबह उठे तो वही बाइक खड़ी थी जिसमें पंक्चर हुआ हुआ था, टायर पुराना था, हेडलाइट जल नहीं रही थी, और फिर आया कि सारा दिन सोचते रहे कि मैं फिर कमाऊंगा और ये करूंगा, काम हुआ नहीं, शाम को जल्दी घर आ गए। तो ऐसे लोग वाकई दीनी दुनियावी तौर पर जो माहिर हों, अच्छे लोग हों, बाखलाक लोग हों, मेहनती लोग हों, उनके साथ बैठे, वाकई ये सेल्फ मोटिवेशन है। इस तरह की मजालिस भी जो है वो, जैसे सैयद साहब ने फरमाया, वाकई ये इंसान को एक एनर्जी देती है। जी खालिद भाई, इस पर अगर आपकी तरफ से कुछ माहिराना राय मिल जाए फिर हम प्रोग्राम को एंड करें। ये
तो मजलिस के बारे में आप इरशाद फरमा रहे थे और ज़बरदस्त गुफ्तगू माशाल्लाह आपने भी फरमाई, कज़ाबी शाह साहब ने भी फरमाई। मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक तो अच्छे लोगों के साथ बैठें कि जहाँ रहेंगे वहाँ सीखेंगे,
सही।
और दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई आपको फायर करना सिखाए, ज़रूरी नहीं कोई आपको कश लेना सिखाए,
सही।
कभी सिर्फ धक्का देना होता है, तैराक तैरना खुद सीखता है,
सही।
जिसने आप तक धुआं भी पहुँचाया है ना, वो आपको कब नशा ही बना देगा आपको अंदाजा नहीं।
बहुत प्यारी बात।
लिहाजा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलैह एक बात सिखाते हैं कि अगर बुखार से बचना है ना तो नज़ले से बचें।
वाह।
नज़ले से बचेंगे तो ये बुखार से बचने में ज्यादा मुआविन रहेगा। अब इसको शरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लें तो जो हमारे मुस्तहबात हैं, हमारे नवाफिल हैं, सुन्नतें हैं,
माशाल्लाह,
दरअसल ये फराइज की हिफाजत के लिए।
वाह।
जो बंदा मुस्तहबात पर अमल करने वाला होगा वो नवाफिल और सुन्नतें नहीं छोड़ेगा, और जो ये सारी चीजें अदा करने वाला होगा उसके फराइज कहीं नहीं जाएंगे। शैतान हमला यूं करवाता है, कहता है अभी तो मैं बहुत दूर हूँ, सिर्फ मुस्ताब छोड़ रहा हूँ, नफिल तो पढ़ रहा हूँ, सिर्फ नफिल छोड़ रहा हूँ, सुन्नतें और फर्ज तो पढ़ रहा हूँ, फिर सुन्नतें भी छुड़वा देता है, हद तक कि नफिल भी छुड़वा देता है। नतीजा ये होता है कि बंदा फिर गुनाह की तरफ आता है, और कब वो शैतान के हाथ में आकर किस तरफ पलटा खा जाए, लिहाजा हाथ उसके हाथ में दे ही नहीं, अल्लाह वालों के हाथ में हाथ दे ताकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तक पहुंचाए।
क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, टॉपिक हमारा महफिल मजलिस के आदाब और गैदरिंग, ये तो इसमें मिक्स गैदरिंग, बाज़ुकात घर में खानदान में बैठे होते हैं, पर्दे का जरूर इंतजाम करें। इस्लामी बहनें खुद अपने पर्दे का इंतजाम करें, देवर है, जेठ है, और जो बहनोई हैं बैठे हैं, बच्चों की खाला जिसको कहते ना कि बच्चों के मामू, बच्चों की खाला, अब जो नाम महरम है वो भी एक साथ बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, नहीं, शरीयत शरीयत है, शादी ब्याह तो वहाँ सब बैठे हैं, बेपर्दगी हो रही है, नहीं, ऐसी महफिल नहीं, ऐसी मजलिस नहीं, ना बैठना है ना जाना है, नाच गाने की महफिल नहीं, ना जाना है ना बच्चों को भेजना है, ये बर्बाद कर देंगी। तो नेकियों वाली महफिल हो, अच्छी महफिल हो, खौफ खुदा वाली महफिल हो, इंशाल्लाह इसमें दुनिया की भी बरकतें मिलेंगी, दीन की तो बरकतें हैं ही हैं, अल्लाह राजी हो जाएगा, उसका हबीब राजी हो जाएगा, और इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा
इंशाल्लाह।
अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم
घर पर मुआशरा।